अरे सही बता रही हूँ, कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी। रात काफी टाइम तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। एसी के बावजूद भी उमस जैसी महसूस हो रही थी, गर्मी लग रही थी। पहले तो सोचा कि कुछ देर बगीचे में ही लेती हूँ, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर अकेली जाती तो भी तेरे सवाल शुरू हो जाते। और तू आराम से सो रही थी, इसलिए जगाना भी सही नहीं था। इसलिए बाहर ना निकलने को सोचकर यहीं खिड़की खोल लिया था। अब मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि मुझे यहाँ पर देखते ही तेरे सवालों की पिटारी खुल जाएगी, वरना मैं तो यहाँ सोती भी नहीं। शत्रुपा देवी तेजी से उठकर खड़ी हुई। चल कोई बात नहीं, तू बताना नहीं चाहती तो मैं भी तुझसे जोर दबाव देकर पूछूंगी नहीं। घड़ी देख, सुबह के 8 बज गए हैं और 9 बजे तेरी शायद रॉल्स बुंदेला में मीटिंग है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, सब तेरा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। पुलकित और समर्थ भी आ चुके हैं। शत्रुपा देवी की हालत को देखकर पारो ने भी ज्यादा कुछ कुरेदना सही नहीं समझा। ओ माई गॉड, अरे ओ मेरी प्यारी पारो, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता, शत्रुपा देवी ने लगभग अपने सर को पीटने के अंदाज में कहा। अब क्या किया मैंने, पारो ने नासमझी में पूछा। अरे तूने तो मुझे ध्यान दिलाया, वरना मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज दोपहर के 1 बजे मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विक्रम के साथ मीटिंग है। पिछले 1 हफ्ते से वो वर्ल्ड वाइड टूर में निकला हुआ था। घड़ी को देखते ही शत्रुपा देवी तेजी से हरकत में आई। वर्कआउट का टाइम निकल चुका था, इसलिए तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर पारो उनके कमरे को साफ कर रही थी और वो अंदर तेजी से नहाते हुए काफी कुछ सोच रही थी, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी विक्रम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में होने वाली मीटिंग थी। आज से बड़ा जल्दी तैयार हो गई, वरना तुझे नहाने में भी कम से कम 1 घंटे का समय लगता था, शत्रुपा देवी को तेजी से बाथरूम से निकलते हुए देखकर पारो ने कहा। अरे हाँ बताया तो, आज ऑफिस में विक्रम से मेरी मीटिंग है, अपनी कलाई पर घड़ी बांध देवी शत्रुपा देवी बोली। और इसीलिए कल रात उसके फोन का इंतजार करते हुए जाने कब तू सो गई, या फिर ऐसा हुआ कि सारी रात तुझे नींद नहीं आई, सुबह जाकर तुझे नींद आई है। ऐसी बात नहीं है, कल मेरी विकल्प से बात हुई थी, विक्रम थका हुआ था और आते ही सो चुका था, इसलिए उससे बात नहीं हो सकी। बाद में उसने रात में फोन करने को चाहा भी होगा तो मैं सो गई थी, शत्रुपा देवी ने तेजी से जवाब दिया। सच में तू सो गई थी या फिर पूरी रात उसके फोन का इंतजार कर रही थी और फिर काउच पर बैठे बैठे ही तुझे सुबह में नींद ने घेर लिया था, पारो ने एक गहरी नजर शत्रुपा देवी पर डालते हुए कहा, जिनके चेहरे से उदासी छुपाई नहीं छुप रही थी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी विकल्प से बात हो गई थी तो मैं रिलैक्स थी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू भी ना बिल्कुल पीछे पड़ जाती है। अच्छा मेरा फोन नहीं मिल रहा था, विकल्प से बात करने के बाद यहीं कहीं रखा था, शत्रुपा देवी ने बात बदलना चाहा। यहीं कहीं रखा था या फिर विक्रम से बात ना हो पाने के कारण गुस्से में कहीं फेंक दिया था, पारो ने कुछ जताते हुए शत्रुपा देवी के फोन की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। वहीं शत्रुपा देवी को पारो की बात सुनकर कल की सारी बातें जहन में ताज़ा हो गई थीं। करीब 2 या 3 साल से भी ऊपर हो चुके थे जब से विक्रम ने उनसे फ़ोन पर ही बात करना छोड़ रखा था। कल भी लाख कोशिश के बावजूद भी शत्रुपा देवी की विक्रम से बात नहीं हो पाई थी। विकल्प ने कई बार फ़ोन कॉन्फ्रेंस पर लेने की भी कोशिश की थी, जिससे कि कम से कम शत्रुपा देवी विक्रम की आवाज़ ही तो सुन ले, लेकिन विक्रम तो जैसे उनकी धड़कनों की भी आवाज़ पकड़ लेता था, उसने फ़ोन काट दिया था। अपने फ़ोन पर तो उसने शत्रुपा देवी का तो नंबर ही ब्लॉक करके रखा था, और यही कारण था जिसके चलते विक्रम का नंबर कई दिनों से बंद आ रहा था और विकल्प को उससे मिलने उसके ऑफिस जाना पड़ा था। ये ले तेरा फोन, किस्मत इसकी अच्छी थी जो तेरे फोड़ने की चाह के बावजूद भी इस बार बच गया है, पारो ने शत्रुपा देवी के आगे उनका फोन बढ़ाया। फोन नीचे कारपेट पर फंसा हुआ मिला था, भगवान का शुक्र था जोर से पटकने के बावजूद भी नर्म और मुलायम कारपेट होने की वजह से फोन सही सलामत था। मेरा तो जी चाहता है कि सबसे पहले तुझे ही उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन अफसोस मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, शत्रुपा देवी नाराजगी से बोली। मानती हूँ तेरे अंदर गुस्सा है, तो गुस्सा उसको दिखाना जो सच में तेरी इस हालत का जिम्मेदार है। पता नहीं इस बेजान फोन पर अपना गुस्सा उतारकर तुझे क्या मिलता है। जो तेरे इस गुस्से का हकदार है उसका तो तू नाम ही नहीं लेना चाहती, जो तेरे प्यार का हकदार है उसे तो तूने साथ समंदर पार भेज दिया है, और जब वो यहाँ आना चाहता है तो तू उसे आने देना नहीं चाहती। आखिर तू चाहती क्या है, बस यही मुझे समझ में नहीं आता, पारो ने चिढ़ते हुए कहा। पारो की बात को नजरअंदाज करते हुए शत्रुपा देवी ने अपने फोन पर नजर डाली। इस पर तो रेड बैटरी शो हो रहा है, शत्रुपा देवी झुंझलाते हुए बोली। चिंता मत कर, मैंने तेरा दोनों पावर बैंक चार्ज कर रखा है, ये ले ले, और फोन भी चार्ज में लगा देती हूँ। जब तक तू नाश्ता करेगी तब तक तेरा फोन भी चार्ज हो जाएगा, तू बस नीचे चल आराम से नाश्ता कर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पारो तो जैसे उनके लिए हर समस्या का समाधान रखे हुए थी। पारो को अपना इतना ध्यान रखते हुए देखकर शत्रुपा जी के मन में गिल्टी सा फील होने लगा। आखिर पारो की कहीं कभी भी कोई गलती भी नहीं थी, बल्कि पारो तो हमेशा उनके सुख दुख में उनकी परछाई बनकर साथ खड़ी रही थी, जबकि जन्म जन्म साथ निभाने का वादा करके लोग बीच भंवर में अकेला छोड़ गए थे। कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा पारो, इंतजार तो मेरे नसीब में लिखा गया है पारो, किसी को भी मेरा इंतजार नहीं, सबको उसी का इंतजार है, सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार है, कहते हुए शत्रुपा देवी की आंखें नम हो गईं। इस शब्द इंतजार ने पारो के दिल को भी उस जाने पहचाने डर के एहसास से धड़का दिया था। हर हर महादेव।